بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت کرمانک 32، 33 اور 34 کی تلاوت اور انواد سنیں گے، ایران کے پرکھیات قاری ابو القاسم سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامانیہ محلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اجانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو. نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو. ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے. اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروتاؤ، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے. ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@www.irib.ir. ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.com/hi. واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065492. شروتاؤ، آج منگلوار ہے، شہری ور کی 15، سفر کی 9 اور ستمبر کی 6 تاریخ. اس سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا اس پرکار ہے. آپ سب سے پہلے انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، جس کے بعد کاریکرم راجنیتک چرچا آپ کی سیوا میں प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद हम चेहलुम के विषय में एक विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे. और श्रोताओ, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से. तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा. अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. لیجیے شوتاؤ، مریم مہردادی اور احمد عباس سے سنیے وشو سماچار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. ایران کے ورشٹھ کمانڈر نے کہا کہ ایران کے راجنیتک فیصلوں کا گہرا اثر امریکہ کے چناؤ پریناموں پر پڑتا ہے. بڑے ٹال مٹول کے بعد اسرائیل نے الجزیرہ کے پترکار کی ہتیا کی بات سویکار کی. بنگلہ دیش کے پردھان منتری نے روہنگیا شرنارتھیوں کے معاملے میں کہا ہے کہ بھارت کافی مدد کر سکتا ہے. ترک راشٹرپتی نے یورپ کو کوستے ہوئے کہا ہے کہ اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے. اور اب آپ وسطار سے سماچار سنیے.
ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا کہ آج ایران میں لیے جانے والے راجنیتک فیصلے کا گہرا اثر امریکہ کے چناؤں کے پریناموں پر پڑتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی قسمت طے ہونے میں ایران کے امام خمینی امام باڑے کا رول ہے. जनरल सलामी ने शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अब अमेरिका के बस में नहीं है कि वो कोई भी मंसूबा बनाए और हमारे इलाके में लागू कर दे, हम उसका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। जनरल सलामी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के अनेक मैदानों में हम पहले नंबर पर हैं, अब तो ये स्थिति है कि कुछ सुपर पावर भी ईरान से हथियार खरीद रहे हैं और संयुक्त सहयोग के प्रस्ताव देते हैं। पासदारान इनकलाब फोर्स के सीनियर कमांडर ने कहा कि आज हम अत्याधुनिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें किसी जंग की कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियां जारी रहती हैं तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम विदेशियों की मदद के आसरे पर नहीं हैं।
पिछले 3 दशकों में ईरान ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है और विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में ईरानी ड्रोन ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। आज की बदलती दुनिया और तेजी से विकसित हो रही तकनीक के दौर में ड्रोन का एक विशेष स्थान है जो आज दुनिया के सशस्त्र बलों में एक महत्वपूर्ण आवश्यक और अनिवार्य हथियार बन गया है। विश्व के विकसित देशों ने व्यापक गतिविधियों के साथ साथ इस क्षेत्र में व्यापक शोध किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में ईरानी ड्रोन ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। ईरान प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने दिसंबर 2019 में आरस नामक एक अत्याधुनिक ड्रोन का अनावरण किया। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे लंबी दूरी का आत्मघाती एंटी रडार ड्रोन है। दुश्मन की रक्षा प्रणाली को नाकाम बनाने के लिए आरस ड्रोन अपने लक्ष्य को 2000 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ नष्ट कर सकता है।
करबला में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के रोजे के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हसन रशीद अल अबायजी के क्षमा कीजिएगा, हसन रशीद अल अबायजी ने करबला में जारी अलक्सा की फरियाद नामक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालिया हफ्तों में वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों ने इसराइली सैनिकों के खिलाफ अपना प्रतिरोध बहुत तेज कर दिया है, जिसके नतीजे में ज़ायूनी अधिकारी बौखला गए हैं। मंगलवार को ज़ायूनी सैनिकों ने वेस्ट बैंक पर हमला किया जिसमें एक फिलिस्तीनी शहीद और 11 घायल हो गए। हसन रशीद अल अबायजी ने कहा कि इस्लामी जगत को दावत दी जाती है कि मस्जिद अल अक्सा की मदद के लिए आ गया है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का समर्थन करते हैं। पवित्र नगर करबला में इस समय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम का कार्यक्रम जारी है और सारी दुनिया से श्रद्धालु करबला पहुंच रहे हैं, जबकि साथ ही अल अक्सा की फरियाद के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में कुद्स की आज़ादी और फिलिस्तीनी जनता के इनकलाब में हुसैनी आंदोलन की भूमिका का जायजा लिया जा रहा है। सम्मेलन में इसका भी जायजा लिया जा रहा है कि इसराइल से रिश्ते बहाल करने की अरब सरकारों की कोशिशों पर अंकुश लगाने का क्या तरीका हो सकता है।
आखिरकार इसराइल ने प्रसिद्ध फिलिस्तीन की महिला पत्रकार शिरीन अबू अकेला की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। हालांकि अवैध ज़ायूनी शासन ने दावा किया है कि अबू अकेला को पिछले मई में गलती से वेस्ट बैंक में ज़ायूनी सेना द्वारा मार दिया गया था। ज़ायूनी शासन का जिसका वजूद ही गैरकानूनी है और वो आए दिन इसका सबूत भी पेश करता रहता है। अभी हाल ही में इसराइल की आतंकी सेना ने अल जजीरा टीवी चैनल के पत्रकार शिरीन अबू अकेला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अबू अकेला की हत्या को लेकर दुनिया भर के आम लोगों में अवैध ज़ायूनी शासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने भी अबू अकेला की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद तेल अवीव शिरीन अबू अकेला की हत्या की जांच कराने की बात करने लगा था। अब जब ये साबित हो गया है कि अबू अकेला की हत्या आतंकी इसराइली सैनिकों ने जानबूझकर की है, तो अवैध ज़ायूनी शासन भी अपने जुर्म को कबूल करने पर मजबूर हो गया। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने कहा है कि वो हत्या में शामिल है, सैन्य कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या आपराधिक जांच नहीं कराएगा।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना वाजिद इस दौरे में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। साथ ही उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में भारत से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने सोमवार को कहा कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से निपटने में उनके देश की मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमा के आर पार नदियों का फिर से पुनर्जीवन करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। शेख हसीना ने पत्रकारों के एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि भारत एक बड़ा देश है, ये बहुत कुछ कर सकता है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के अनुसार
म्यांमार की सरकार ने 2017 में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसके कारण 7 लाख रोहिंग्याओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। अधिकार समूहों को संदेह है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं का नरसंहार किया। संयुक्त राष्ट्र और कई दूसरे देशों ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए और पड़ोसी देशों में भागकर पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद दी। इस समय रोहिंग्या शरणार्थी भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के अनुसार रोहिंग्या संकट का सबसे बुरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार के अपराध किए थे, उससे सारी दुनिया हिल गई थी।
गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नादेर गोदरेज ने सरकार और उद्योग से विभाजनकारी गतिविधियों पर रोक के लिए अधिक प्रयास करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें देश को बांटना बंद कर देना चाहिए। भारत का प्रसिद्ध उद्योग समूह गोदरेज के प्रबंध निदेशक ने एक किताब के लॉन्च कार्यक्रम से इतर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि हम आर्थिक मोर्चे पर अब अच्छा काम कर रहे हैं और वित्तीय समावेशन तथा शिक्षा जैसे कल्याणकारी कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन देश को एकजुट करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। नादिर गोदरेज की टिप्पणी इस पहलू को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि देश के अग्रणी उद्योगपति सामान्य तौर पर कोई बयान देने से बचते हैं। 2019 में दिवंगत कारोबारी राहुल बजाज ने कहा था कि देश में डर का माहौल है, जहां लोग आलोचना करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देश को बांटना बंद कर देना चाहिए और इसे एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि सरकार भी आर्थिक वृद्धि के लिए इसे जरूरी मानती है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।
भारत के उत्तर प्रदेश में जब जब विकास का मुद्दा उठता है, तब तब इस राज्य की योगी सरकार यूपी के शहरों, गांवों, मोहल्लों और अब तो गलियों के नाम भी बदलने में लग जाती है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में नगर निगम ने एक मसौदा परिसीमन आदेश में लगभग एक दर्जन वार्ड के मुस्लिम नाम बदल दिए हैं। नाम बदलना परिसीमन अभ्यास का हिस्सा था, जिसके तहत गोरखपुर में वार्ड की कुल संख्या 80 हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जिन वार्डों के नाम बदले गए हैं, उनमें हुमायूंपुर शामिल है, जिसे अब हनुमंत नगर कहा जाएगा। इसी तरह तुर्कमानपुर को शहीद अशफाकुल्ला नगर के नाम से जाना जाएगा, जबकि रसूलपुर का नाम बदलकर महाराणा प्रताप नगर और दाऊदपुर को अब रघुपति सहाय फिराक नगर कहा जाएगा।
तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि यूरोप ने रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं, उनकी वजह से रूस के राष्ट्रपति ने गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं रूस के ऊर्जा मंत्री निकोलाय शेलगिनोव ने मंगलवार को कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने रूस की गैस की कीमत की कोई सीमा निर्धारित करने की कोशिश तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा रूस से यूरोप के लिए गैस की सप्लाई में रुकावटें पैदा हो जाने के बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोगान ने राजधानी अंकारा में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि उनके देश को गैस के भंडारों में किसी किल्लत का सामना नहीं है और यूरोप अगर आज परेशान है तो दरअसल उसे वही फसल काटनी पड़ रही है जो उसने बोया है। अर्दोगान का कहना था कि जाड़े के मौसम में यूरोप की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। रूस के ऊर्जा मंत्री शेलगिनोव ने कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई बहाल करने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है।
फ्रांस के मंत्रिमंडल ने मोरक्कन मूल के इमाम हसन इकोसान को इसराइल के खिलाफ एंटी सेमिटिज्म और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने के आरोप में देश से निकालने के फैसले पर मोहर लगाई है। हालांकि मस्जिद के इमाम हसन इकोसान की तारीफ होती थी कि उन्होंने स्थानीय आबादी से बहुत अच्छे रिश्ते रखे और स्थानीय समाज में बहुत घुल मिल गए थे। फ्रांस के गृह मंत्री जेरार्ड डारमानान ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला लोकतंत्र और उसके मूल्यों की विजय है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय 100 इमामों की सूची बना रहा है जिन्हें सरकार देश से बाहर निकालना चाहती है। इनमें कुछ इमाम तो वो हैं जिन्होंने बड़े महत्वपूर्ण इस्लामी संगठनों की बुनियाद रखी। इस फैसले को फ्रांसीसी सरकार की उस योजना की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, जिसके तहत फ्रांस की सरकार अलग ही रंग रूप का इस्लाम पैदा करना चाहती है जो अधर्म को बढ़ावा दे। फ्रांस की मुस्लिम आबादी बार बार ये शिकायत कर रही है कि उसे आजादी से धार्मिक नियमों के पालन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। چین کی سرکاری سماچار ایجنسی شنوا کی رپورٹ کے مطابق چین کا سیچوان پرانت جو کہ پہلے سے ہی کووڈ 19 کے بڑھتے معاملوں اور ابھوتپور سوکھے کی سمسیا سے جوجھ رہا ہے۔
افغانستان کی راجدھانی کابل میں روسی دوتاواس کے باہر سوموار کو ہوئے ایک آتمگھاتی حملے میں دوتاواس کے دو کرمچاریوں کی موت ہو گئی۔ روس کی سماچار ایجنسی آر آئی اے نووتسی اور ودیش منترالے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی راجدھانی میں استھت روسی دوتاواس کے باہر بھیشن دھماکہ ہوا۔ وسفوٹ دوتاواس کے کونسلر سیکشن کے پرویش دوار پر اس سمے ہوا جب ایک روسی راجنیک ویزا کے لیے باہر قطار میں کھڑے لوگوں کے نام پکارنے کے لیے نکل کر آیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। परमाणु वार्ता के बारे में यूरोपीय संघ का दावा, विश्व अहले बैत परिषद के महामंत्री के साथ वार्ता और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, इन मुद्दों पर कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی سمبھاوی سمجھوتے کی شرط یہ ہے کہ دباؤ کی نیتی نہ اپنائی جائے۔ ایک سمیکشا لے کر اپستھت ہیں اختر عباس۔
تہران پر لگے پرتبندھوں کو اٹھانے کے سمبندھ میں ایران کی وارتاکار ٹیم کے سلاحکار نے یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پربھاری کے حالیہ دعوے کے بارے میں کہا ہے کہ اسلامی گنتنتر ایران سمبھاوی سمجھوتے میں خامیوں اور اسپشٹتاؤں کو سویکار نہیں کرے گا۔ یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پرمکھ جوزف بوریل نے سوموار کو امریکہ کو جے سی پی او اے کے الگھن کرتا کے روپ میں بتائے بنا کہا کہ انہیں جے سی پی او اے کو پنرجیوت کرنے کے لیے وینا میں ایک سمجھوتے تک پہنچنے کی امید بہت کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پرمانو سمجھوتے پر وارتا درشٹیکوڑوں کے نکٹ ہونے کے بجائے ادھک دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی گنتنتر ایران کی وارتاکار ٹیم میں شامل سلاحکار محمد مرندی نے ان بیانوں کے بارے میں ٹویٹ کیا کہ بوریل امریکہ کے گھٹک ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان وارتاؤں کا مقصد پشچم دوارا جے سی پی او اے کا الگھن اور ایرانی ناگرکوں کو لکشت کرنے والے ادھکتم پرتبندھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پرتبندھ ایسی حالت میں ہے کہ ایران پرمانو سمجھوتے پر پوری طرح پرتبندھ ہے۔ ایران خامیوں، شونیوں اور اسپشٹتاؤں کو سویکار نہیں کرے گا اور امریکہ یورپی سنگھ پر خرچے لاد رہا ہے۔ 31 اگست کو یورپی سنگھ کی ودیش نیتی کے پرمکھ نے آنے والے دنوں میں ایک سمجھوتے کی امید ظاہر کی تھی۔ واسطو میں بوریل کے کل کے بیان کو پچھلے سپتاہ امریکی ودیش منترالے کے پروکتا دوارا دیے گئے بیانوں کے انروپ میں دیکھا جا سکتا ہے، جنہوں نے جی ایس سی پی او سمجھوتے پر لوٹنے کے لیے یورپی سنگھ دوارا پرستاوت مسودے پر ایران کی پرتکریا کو اسنرچت بتایا تھا۔ شکروار کو وائٹ ہاؤس کے پروکتا نے یورپی سنگھ دوارا پرستاوت مسودے پر ایران کی پرتکریا کے جواب میں کہا تھا کہ ایران کو اپنے سرکشا اپایوں کے دائتوں پر جے سی پی او اے کو پنرجیوت کرنے کی شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ امریکہ پر وشواس کے خراب اتہاس اور جے سی پی او اے کے ڈھانچے کے بھیتر اپنی پرتبدھتاؤں کو لاگو کرنے میں یورپی سنگھ کی نشکریتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایران نے وینا میں وارتا کے اس دور کی شروعات میں بھی بل دیا تھا کہ کسی بھی سمبھاوی سمجھوتے کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ بھوشیہ میں ایران کے خلاف دباؤ کی نیتی نہ اپنائی جائے، استھائی روپ سے پرتبندھوں کو ہٹایا جائے اور ایران کے آرتھک ہتوں کی گارنٹی دی جائے۔
विश्व अहल बैत परिषद के महामंत्री के साथ हमारे साथी रविश जैदी ने बात की है, जिसे आप भी सुनिए।
दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व अहल बैत परिषद के भारत के महासचिव थे मौलाना जलाल नकवी। ये वो काफी सक्रिय हैं भारत के अंदर और इस वक्त तेहरान आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल बैत वर्ल्ड असेंबली हर चार साल में एक बार एक अपनी जनरल असेंबली की मीटिंग यहाँ कॉल करती है, हम उसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, और जिसका सबसे पहला हदफ और मकसद ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया के लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए और अहले बैत की तालीम को दुनिया में आम किया जाए, और जो मजहब हक्का है शिया इस्नाशरी उसकी तरवीज और तबलीग के सिलसिले में लोगों को हकाइक से आशना किया जाए। अहले बैत वर्ल्ड असम्बली मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मौजूआत पर काम करती है, और ख़ास तौर से इस इजलास का जो महवर है और इस इजलास का जो असल मकसद है वो है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अक्ल करामत और इल्म के एतबार से उनको दुनिया के सामने किस तरीके से पेश किया जाए। मकसद पूरी तरीके से रिलीजियस है, ताकि मजहब अहले बैत और अहले बैत के पैगाम को आम करने के सिलसिले में किन किन चीज़ों पर की ज़रूरत है और उसे किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने हकाइक को पेश किया जाए।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं मुसलमानों के दरमियान मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ईरान जो का प्रयास है वो ये कि मुसलमानों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इस प्रयास में ईरान किस हद तक कामयाब है और इसमें इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई का क्या रोल है, इसको आप हमको बता सकते हैं?
देखिए, हर दौर में वहदत इस्लामी की ज़रूरत रही है, और हम तो चूंकि हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक है तो सिर्फ वहदत इस्लामी की नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर मजहब के बीच में इत्तेहाद एकता और वहदत होना चाहिए, इसके हमेशा से नज़रिए के हम कायल रहे हैं और इसी नज़रिए को आगे बढ़ाने पर काम करते रहें। सुप्रीम लीडर रहबर मौज़म आयतुल्ला सैयद अली खामेनई आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे लीडर की हैसियत से अपनी पहचान रखते हैं कि जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर और अपने ईरान के अंदर और ईरान के अलावा भी सरहदों से बहुत दूर दूर तक अपने पैगाम के ज़रिए, अपने नज़रिए के ज़रिए, अपने जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके ज़रिए उसको आम यानी एक ऐसी शांति की स्थापना के लिए काम किया है कि जहां साम्राज्य ताकतें यमन, बहरैन, इराक, सीरिया, लबनान जैसे मुल्कों में मुसलसल अफ़गानिस्तान में जंग का माहौल पैदा करना चाहती हैं, वहीं पर ईरान ने उस जंग को खामोश करने और वहां पर अमन कायम करने का काम किया है। तो यह आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की डिप्लोमेसी है और उनकी सियासत मदारी है कि उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ इसमें ईरान की हुकूमत कामयाब रही, वो सुपरविज़न आयतुल्ला सैयद अली खामनेई का है।
अंत में एक सवाल ये है कि हमारे जो पाठक हैं पास टुडे हिंदी के और जो सुनने वाले हैं, जो हमारी साइट को देखने वाले, उनके लिए क्या संदेश दे सकते हैं आप?
किसी भी कौम के लिए, मज़हब के लिए अपनी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस कौम का सबसे अजीम सरमाया, उस कौम का जो सबसे अजीम सरमाया और उसकी पहचान है उसको दुनिया के सामने आम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि मजहब तशय्यो के शिया मजहब के पास जो सबसे बड़ा सरमाया है वो अमन, शांति, अदल, इंसाफ, ये है। ये दुनिया के सामने इस पैगाम को आम करना हमारा मकसद है। हमारी कम्युनिटी के लोगों को चाहिए, जो भी हिंदी जबान के लोग हैं वो हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़े हुए किसी भी मज़हब के लोग हैं, उन्होंने अहिंसावाद के ऊपर ही हमेशा काम किया है, महात्मा गांधी का देश है, और जहाँ भी जब कभी भी जुल्म होता है तो आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी और महात्मा गांधी के नज़रियात को हमेशा से दुनिया पेश करती आई है, ताकि जुल्म का जवाब सब्र और अमन से दिया जा सके।
اور شوتاؤ اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارت کے پردھان منتری نے بنگلہ دیش کے ساتھ سمبندھوں کو میتری پورن بتایا ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
بھارتی پردھان منتری نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ نے آج دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ایک دوسرے سے بھیٹ کی اور پارسپرک ہتوں سے سمبندھت دویپکشی شیتری اور انتراشٹری مدوں پر چرچا کی۔ بتایا جاتا ہے کہ پرتینیدھی منڈل استریہ وارتا میں دونوں دیشوں نے ویپار، کنیکٹیویٹی اور رکشا کے شیتر میں آپسی سہیوگ کے مدوں پر وچار ومرش کیا۔ پرمانو پردیوگیکی، وگیان، انترکش اور میڈیا کے شیتر میں سہیوگ کے ساتھ سمجھوتوں اور مسودوں پر ہستاکشر کیے۔ سنیوکت سمواددتا سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ دونوں دیشوں کا دویپکشی سہیوگ کافی زیادہ ہے اور امید ہے کہ پرمانو شیتر میں بھی دونوں دیش سہیوگ بڑھائیں گے۔
پردھان منتری شیخ حسینا جی کے نیتروتو میں بنگلہ دیش نے الیکھنیے پرگتی کی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا آپسی سہیوگ بھی ہر شیتر میں تیزی سے بڑھا ہے۔ آج بنگلہ دیش بھارت کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پارٹنر اور کھیتر میں ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ ہمارے گھنشٹ سانسکرتک اور پیپل ٹو پیپل سمبندھوں میں بھی نرنتر ورتھی ہوئی ہے۔
بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کا سب سے مہتوپورن اور نکٹتم پڑوسی دیش ہے اور دونوں دیشوں کے دویپکشی سمبندھوں کو پڑوس کی کوٹ نیتی کے لیے آدرش مانا جاتا ہے۔ اس سے پورو آج راشٹرپتی بھون میں بنگلہ دیشی پردھان منتری شیخ حسینہ کا آدھیکارک روپ سے سواگت کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس افسر پر بھارتی پردھان منتری نریندر مودی اور ان کے منتری منڈل کے انیک منتری بھی اپستھت تھے۔ بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی استھاپنا سے اب تک بھارت اور بنگلہ دیش کے سمبندھوں کو مدھر بتایا اور بنگلہ دیش کے سوتنترتا سنگرام میں بھارت کی سہایتا پر آبھار پرکٹ کیا۔ 3 ورشوں کے انترال کے بعد بنگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ حسینہ ایک اچھ استریہ پرتنیدھی منڈل کے ساتھ کل دلی پہنچی تھی، جن کا ہوائی اڈے پر سواگت کیا گیا تھا۔ شیخ حسینہ نے کل دلی پہنچنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بھی حاضری دی تھی۔ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے پردھان منتری کی اس یاترا سے جہاں کئی شیتروں میں نئی دلی اور ڈھاکہ کے بیچ سہیوگ میں وستار ہوگا، وہیں دونوں دیشوں کے بیچ جن سمپرک بھی مضبوط ہوگا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروع آپ نے سنا کارکرم راجنیتک چرچا، اور اب امام حسن علیہ السلام کے چہلم کے اپلکش میں ایک وشیش کارکرم آپ کی سیوا میں پرستت کیا جا رہا ہے۔
دوستوں، آج کے کارکرم میں ہم اس بات پر چرچا کریں گے کہ اربعین کی پد یاترا سے ہمیں کیا سندیش ملتا ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے۔ اختر رضوی اور سواتی کا سلام سویکار کیجیے۔
ایک میں لولو مرجان کتاب کے لیکھک مرزا حسین نوری نے جب 30 لوگوں کے ساتھ بنا کسی سویدھا کے نجف سے کربلا تک پیدل مارچ کیا تو اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ پرمپرا جسے بھلا دیا گیا تھا اتنے بڑے پیمانے پر پھر سے زندہ ہوگی۔ کورونا کال کو چھوڑ کر حالیہ ورشوں میں ہر سال 3 کروڑ زائرین عراق اور پوری دنیا سے اربعین کے موقع پر کربلا پہنچتے ہیں۔ जायरीन की इतनी बड़ी संख्या को देखकर हमें यह सबक मिलता है कि जो काम ईश्वर के लिए और दिल से अंजाम दिया जाता है उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है।
इराकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक अरबईन 2015 में जायरीन की संख्या 2,70,00,000 तक पहुंच गई थी और करबला तक जाने वाले मार्गों पर 17,500 मौकिब या जायरीन को भोजन समेत उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं के शिविरों को स्थापित किया गया था। दूसरी ओर अरबईन के अवसर पर करबला तक पहुंचने वाले मार्गों खासतौर पर नजफ करबला राजमार्ग पर स्वयंसेवी ऐसे शिविरों की स्थापना करते हैं जहां तीनों टाइम भोजन, चाय, शरबत, खाने पीने की अन्य चीजें और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जहां हर दिन 32,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इसके बावजूद स्वयंसेवियों और आम लोगों के चेहरों पर संतोष की झलक उसी वक्त आ पाती है जब उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें जायरीन की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
अरबईन की महिमा, भव्यता और बलिदान देकर ही दुश्मन कांपने लगते हैं। वे अरबईन मिलियन मार्च की खबरों को व्यापक रूप से सेंसर करते हैं। इस्लाम और शिया मुसलमानों के दुश्मनों को इस बात का भी अफसोस है कि वे क्यों इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद को लोगों के दिमाग से नहीं मिटा सके। यहां एक सवाल यह पैदा होता है कि मानव इतिहास में अनगिनत लोग शहीद हुए हैं, विश्व युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत और कुर्बानी हमेशा लोगों के जहनों में जिंदा है। जबकि इमाम हुसैन की याद को मिटाने के लिए और आशुरा की घटना पर पर्दा डालने के लिए गंभीर प्रयास हुए ताकि लोग सच्चाई से अवगत नहीं हो सकें। यहां तक कि इतिहास में कुछ शासकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इमाम हुसैन की याद को मिटाने का प्रयास किया और हजरत के पवित्र मजार को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे करबला और इमाम हुसैन की याद को नहीं मिटा सके।
दोस्तों, सूरह मायदा की 54वीं आयत में ईश्वर उन लोगों को सचेत करते हुए कहता है जो मार्ग से भटक गए हैं कि उनके इस कदम से धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। ईश्वर उन लोगों को लेकर आएगा जिनसे वो प्रेम करता होगा और वे भी उससे प्रेम करते होंगे। वे मोमिनों के साथ विनम्र रहते हैं लेकिन काफिरों के मुकाबले में मजबूत। ईश्वर के मार्ग में जिहाद करते हैं और किसी की भी आलोचना से नहीं घबराते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, जिस पर वो चाहता है उस पर होती है। उसकी कृपा असीम है और वो बुद्धिमान है।
अरबईन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मोमिनीन भी इसी तरह के हैं। वे सत्य के रास्ते पर अग्रसर हैं। उन्होंने एक महान आंदोलन की शुरुआत भी की है ताकि सत्य को असत्य से अलग कर दें और लोग रोशनी देखकर अंधेरों को पहचान सकें। लोग इससे यह संदेश ले सकें कि अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी सच्चाई के मार्ग पर डटे रहेंगे ताकि हमेशा के लिए सफल हो जाएं। वे अपने इमाम की तरह धर्म की निशानियों को स्पष्ट करना चाहते हैं और उनकी रोशनी में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना चाहते हैं। इमाम हुसैन के आंदोलन का भी मूल उद्देश्य यही था। इमाम हुसैन ने कहा था कि हे ईश्वर, तू जानता है कि जो कदम हमने बढ़ाया है वह सत्ता हासिल करने या दुनिया हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि दीन की निशानियों को फिर से उनका सही स्थान प्रदान कर सकें और तेरे देश में सुधार कर सकें ताकि अत्याचारग्रस्त लोग सुरक्षित रह सकें और तेरे धार्मिक आदेशों पर अमल किया जा सके।
दोस्तों, अरबईन मिलियन मार्च को प्रेम और ईमान की यात्रा का नाम दिया गया है। ये वो आंदोलन है जिसकी आवाज़ इंसान अपने दिल से सुनता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत में कदम उठाता चला जाता है। इस मिलियन मार्च का एक लंबा इतिहास है और इससे अनेक सबक हासिल किए जा सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक निरंतर और लंबा अनुभव बुद्धि की शक्ति में वृद्धि करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले उनके चेहलुम या अरबईन के लिए हफ्तों और महीनों पहले से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से जायरीन की इतनी अधिक संख्या से रास्तों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जायरीन पूरे धैर्य से इन समस्याओं का सामना करते हैं। उनके बीच भाईचारा, दोस्ती इन कठिनाइयों को सहन करने का मुख्य कारण बनता है। इसमें सभी के लिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक सबक है, और वो ये कि एकजुटता और सहानुभूति की छाया में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है और एक महान आयोजन आयोजित किया जा सकता है। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शिक्षा पर अमल करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी कि हे मेरे बेटे, सत्य के रास्ते पर डटे रहना, यद्यपि उसमें कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े।
पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, मोमिन से मोमिन की दोस्ती ईमान की स्पष्ट निशानियों में से एक है, और जो कोई भी ईश्वर के लिए दोस्ती करता है या दुश्मनी रखता है, ईश्वर के लिए दान करता है और ईश्वर के लिए अपना हाथ रोकता है, वह ईश्वर के खास बंदों में से है। अरबईन पर करबला जाने वाले जायरीन को भी इसी मोहब्बत और भावना की वजह से दुनिया को गरिमा और स्वतंत्रता की संस्कृति से परिचित कराने के लिए चुना गया है। वे सुंदर मानवीय गुणों से सुसज्जित हैं और वे मानवता और इंसानियत सिखाते हैं। जैसा कि इमाम हुसैन ने फरमाया है, नैतिक गुणों को सीखने का प्रयास करो और इस आध्यात्मिक पूंजी को हासिल करने की कोशिश करो।
दोस्तों, मौकिब या शिविर लगाने वाले अपनी सेवा भावना से दोस्ती और मोहब्बत का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं और सेवा में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। शिया मुसलमानों के इमामों का कहना था कि जो कोई भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने भाई की सेवा करता है, ज़रूरत के समय ईश्वर उसकी मदद करता है और उसे उसकी सेवाओं से ज़्यादा उसे दुनिया की समस्याओं से मुक्ति प्रदान करता है। जो कोई भी किसी मोमिन के दिल से कोई दुख दूर करता है, ईश्वर इस लोक में और परलोक में उसकी चिंताओं को दूर कर देता है। जो कोई भलाई करता है, ईश्वर उसके साथ भलाई करता है और ईश्वर भलाई करने वालों को पसंद करता है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सत्य और न्याय की स्थापना के लिए आंदोलन किया था। अरबईन के दिन इमाम हुसैन के जायरीन उनके पवित्र मजार की जियारत करते हैं और उन पर सलाम भेजते हैं। जायरीन पवित्र शहर करबला में उपस्थित होकर अपने इमाम से वादा करते हैं कि वे उनके संदेश को दुनिया तक पहुंचाएंगे, जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ देंगे और अत्याचारियों के खिलाफ प्रतिरोध करेंगे। यह मनोकामना हर धर्म और मत से बढ़कर एक प्राकृतिक और मानवीय कार्य है। इसीलिए अरबईन के मिलियन मार्च ने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। दुनिया भर के विभिन्न देशों से मुसलमान और गैर मुस्लिम इस अरबईन मार्च में भाग लेने के लिए इराक की यात्रा करते हैं। यह विशाल जनसमूह हमें सिखाता है कि शहादत और कुर्बानी की याद को दुश्मन के प्रचार के तूफान के सामने जिंदा रखना है और मानवीय और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، آپ نے اربعین یا چہلم کے سلسلے میں ہمارا وشیش کارکرم سنا، اور اب پرست ہے سبھا کا انتم کارکرم قرآنی قصے۔
قرآن قصے، دوستو ساپتاہک کارکرم قرآن قصے کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں سواتی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آشا ہے ہمارا یہ پریاس بھی آپ کو پسند آئے گا۔
دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مہان پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے کال میں ود، سوا، یغوس، یاؤق اور نس نام کے پانچ بڑے نیک بندے رہتے تھے۔ لوگ ان سے بہت پریم کرتے تھے۔ جب ان سب کا نندن ہو گیا تو ان کے پریجن ان کے ویوگ میں بہت دکھی رہا کرتے تھے۔ اس دوران ایک آدمی آیا اور اس نے دنیا سے دھار چکے نیک بندوں کے پریجنوں سے کہا، کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرو گے کہ ہم ان لوگوں کی پرتیما بنا دیں؟ اس پر ان کے پریجنوں نے کہا، ہاں ان کی پرتیما بنا دو، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ اس کے بعد اس آدمی نے ان پانچ بھرے بندوں کی پرتیما بنا دی اور ان سب کو ایک سارجنک استھل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ان پانچ بھلے بندوں کے پریجن، دوست اور ان سے شردھا رکھنے والے ان پرتیماؤں کے درشن کے لیے جاتے تھے اور ان سے اپنے من کی بات کرتے اور سمان میں بہت سے ان کے سامنے سر بھی جھکاتے تھے۔
کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، اور جب ان پرتیماؤں کا آدر سمان کرنے والی اور ان کے پرتی شردھا رکھنے والی پیڑھی کا ندھن ہو گیا تو بعد والی پیڑھی نے بھی ان کی شیلی کو جاری رکھا۔ تیسری پیڑھی کے لوگ اس وشے کو پوری طرح بھول گئے کہ معاملہ کیا تھا اور کن لوگوں کی یاد میں ان پرتیماؤں کو بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ پرتیمائیں سمان جنک وستوئیں ہیں اور ان کا سمان و اپاسنا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے پوروجوں کو ان کا سمان کرتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہمارے پوروج اس لیے ان پرتیماؤں کا سمان کرتے تھے کیونکہ وہ ایشور کے نکٹ ان کی شفاعت کرتی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے بوتوں و پرتیماؤں کو پوجنا آرم کر دیا۔
سارانش یہ کہ ان لوگوں نے بوتوں کو مہان ایشور کا شریک بنانا و سمجھنا آرم کر دیا۔ جو لوگ اس پرکار کا کاریہ کرتے تھے انہیں انیک ایشوروادی کہا جانے لگا۔ پوتر قرآن کے سورہ نوح کی 23 آیت میں ان بوتوں کے ناموں کا الیکھ کیا گیا ہے، اور کافروں و انیک ایشوروادیوں نے کہا، اپنے خداؤں و بتوں کو نہیں چھوڑنا، وشیش کر ودا، سوا، یغوس، یاؤق، نس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ پانچ بتوں کے نام ہیں جو اتہاس میں سرکشت ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام عربوں تک استھانانترت ہو گئے۔ ان بتوں کی پوجا کرنے والی اجانی قوم اپنی بھلائی کو مورتی پوجا میں ہی سمجھتی تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر بتوں کی پوجا نہیں کی گئی تو پرکوپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں مورتی رکھنا آرم کر دی، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مصیبت کے سمے یاترا میں اور شیطان سے رکشا میں ان بتوں کی مدد لیں گے، اور کھیتی باڑی آدی میں بھی ان سے مدد لیں گے۔ یہی نہیں، کچھ عرب ان بتوں سے مدد لینے کے لیے سفر میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھتے اور لے جایا کرتے تھے۔
प्रसिद्ध इतिहासकार हेशाम कल्बी ने लिखा है कि जब कोई अरब यात्रा पर जाता था और जब वह कहीं रास्ते में उतरता तो वह चार पत्थरों को उठाता और जो पत्थर उनमें सबसे अच्छा होता था उसे उपासना के लिए चुनता था, और तीसरे तीन पत्थरों का प्रयोग चूल्हा बनाने के लिए करता, और जब खाना बनाकर और खा पी कर चल देता तो उन पत्थरों को वहीं छोड़ देता। इसी प्रकार जब वह कहीं दूसरी जगह पर पड़ाव डालता तो चार पत्थरों को चुनता और उनमें जो सबसे अच्छा होता उसे पूजा के लिए रख लेता और शेष तीन का प्रयोग चूल्हा बनाने के लिए करता और जो पहले वाले पत्थर होते थे उन्हें फेंक देता था। इस प्रकार वह अपनी यात्रा के दौरान अपने खुदाओं को बदल दिया करता था।
दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पवित्र काबे में और उसके आसपास इतने बुत रखे गए थे कि दूर से बड़ी मुश्किल से काबा दिखाई पड़ता था। जब एक ईश्वरवाद की उपासना करने वाले इस प्रकार का दृश्य देखते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। इसी प्रकार इस्लाम के आरंभिक काल में जो नए मुसलमान हुए थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अभी पूरी तरह से अपने दिलों से बुतों का प्रेम नहीं निकालते थे। वे बुतों को सम्मान के दृष्टि से देखते थे। अनेक ईश्वरवादी बुतों पर चढ़ावा भी चढ़ाते थे और अपने मुरादों व मन्नतों को उनसे मांगते थे। कुछ बीमार बुतों से शिफा लेने के लिए स्वयं को बुतों से बांध लेते थे, कुछ बुतों के लिए कुर्बानी करते थे और कुछ बुतों का सामीप्य प्राप्त करने के लिए स्वयं को बुतों से मलते थे।
खाने काबा के पास और अंदर जो भी बूत थे उन सब में यगुस नाम का बूत सबसे बड़ा और सुंदर था। वह शेर की शक्ल का था और उसे काफिरों व अनेक ईश्वरवादियों ने सुगंधित कर रखा था और बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित भी कर रखा था। जो भी वहां जाता था वह उसे चूमता था, उसके सामने सजदा करता था और पेट के बल लेटे लेटे यकू नाम के बूत तक स्वयं को पहुंचाता था। यको नाम का बूत घोड़े के आकार का था, उसे भी चूमता था और उस पर सुगंध लगाता था और मन्नत मुराद मांगने के बाद उससे अलग होता था। उसके बाद वह नस्र नाम के बूत के पास जाता था। यह बूत बाज पक्षी की शक्ल का था। बूतों की पूजा करने वाला जब नस्र नाम के बूत के पास पहुंचता तो ऊंची आवाज में उसे पुकारता और दुआ के कुछ शब्द पढ़ता था।
दोस्तों, महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में मूर्तियों और उनकी पूजा करने वालों की निंदा की है और कहा है कि मूर्ति और मूर्तियों की पूजा करने वाले उस नरक के ईंधन होंगे जिसे काफिरों के लिए तैयार किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि महान ईश्वर कण के बराबर भी किसी पर न तो अत्याचार करता है न करेगा, तो बुतों को क्यों नरक में डालेगा? इसमें बुतों की क्या गलती है? जो लोग बुतों की पूजा करते हैं बुतों ने उनसे अपनी इबादत करने के लिए तो नहीं कहा था? इस सवाल के जवाब में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनमें से एक जवाब यह है कि मूर्तियां निर्जीव होती हैं न कि सजीव। अगर निर्जीव वस्तु के ऊपर पूरा हिमालय पर्वत भी रख दें तो भी उसे कोई पीड़ा नहीं होगी क्योंकि वो निर्जीव और बेजान है। इसी प्रकार अगर उसे दहकती हुई आग में भी डाल दिया जाए तब भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे शब्द में उसे सजा देना या ना देना बराबर है।
सवाल ये पैदा होता है कि महानीश्वर फिर उसे क्यों नरक में डालेगा? उसका एक आसान सा जवाब है, अगर आपका बेटा या बेटी दिन रात भर मोबाइल चलाती हैं और सही से पढ़ती लिखती नहीं है और आप समझा समझा कर थक गए तो एक दिन आपको बहुत क्रोध आया और आपने अपनी बेटी के सामने उसके मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो आपके इस काम से मोबाइल को कोई पीड़ा नहीं हुई बल्कि पीड़ा आपकी बेटी को हुई। उसी तरह भूतों को नरक में डालने से भूतों को कोई पीड़ा नहीं होगी बल्कि तकलीफ और पीड़ा उन लोगों को होगी जो भूतों की पूजा करते और उनसे मदद मांगते थे।
जो इंसान इस बात को जानता है कि समूचे ब्रह्मांड और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है सबकी रचना करने वाला महान ईश्वर है, वो कभी भी महान ईश्वर के अलावा किसी दूसरी भी रचना की उपासना नहीं करेगा। कितनी अजीब बात है कि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि बुत निर्जीव हैं, फिर भी उनसे मदद मांगते हैं। जबकि निर्जीव वस्तु के अंदर एक तिनके को भी इधर उधर करने की क्षमता नहीं होती। वो किसी भी प्रकार का न तो फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान। उसके पास कान नहीं होते, वे सुनते नहीं है, फिर भी मूर्तियों की पूजा करने वाले उनसे दुआएं मांगते और अपने मन की बात उनसे कहते हैं।
महानेश्वर ने भूतों की पूजा करने वालों को यह समझाने के लिए मक्खियों को आदेश दिया कि वे समस्त सुगंधों को चाट जाए। काफिर और अनेकेश्वरवादी जितनी भी सुगंध लगाते थे सब मक्खियां चाट जाती थी। काफिर इस बात से बहुत परेशान थे और दांतों तले उंगली दबाए थे। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बूतों पर लगाए जाने वाली सुगंध कहाँ चली जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है। काफिर बूतों की पवित्रता की सुरक्षा और अपनी उपासना का औचित्य दर्शाने के लिए कहते थे कि जो सुगंध बूतों पर लगाई जाती है वे सही नहीं है और हर बार अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी कस्तूरी व सुगंध लाई जाती थी, पर उसका कोई फायदा नहीं होता था। जैसे ही बूतों को सुगंधित किया जाता था वैसे ही मक्खी उन पर लगाई गई सुगंध चाट जाती। यह वक्त था जब महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरे हज की 73वीं आयत नाजिल की। इस आयत में महान ईश्वर कहता है, हे लोग, सही व अच्छी तरह से दी गई मिसाल को सुनो। जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और की उपासना करते थे वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। यदि भी इस काम को एक दूसरे से मिलकर भी अंजाम दे तब भी अंजाम नहीं दे सकते। जब मक्खी कोई चीज चाट जाती है तो उसे वे वापस ले सकते हैं। जान लो कि भूत और भूतों की पूजा करने वाले कुछ भी नहीं है।
महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में ये बयान किया है कि बुतों की पूजा करने वालों का तर्क कितना कमजोर है। वे उन बुतों व मूर्तियों की पूजा करते हैं जो न तो फायदा पहुंचा सकती हैं और न ही नुकसान। अगर कोई जानदार बेजान चीज से मदद मांगे तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई इंसान अपने हाथ से बने बुतों को तराशे और तराशने के बाद उन्हें नहलाए धुलाए और आभूषणों से सुसज्जित करे और फिर उन्हें मूर्तियों की उपासना करे तो आप क्या कहेंगे? जब बुतों पर लगाई जाने वाली महंगी से महंगी कस्तूरी को मक्खियां चाट जाती थीं और बुत उन मक्खियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे तो मूर्तियों की पूजा करने वालों की क्या रक्षा करेंगे?
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारा ये प्रसारण शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और अन्य सभी साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। शुभ रात्रि।